पापा रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार करें मीनू सिंह का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आपसे मुलाकात करवाते हैं अपने एक श्रोता से, और इसी क्रम में हमारे आज के श्रोता हैं ग्राम भुरसुदा गुजरा के भगवानी प्रसाद सेन जी। भगवानी जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में।
नमस्कार दीदी, सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से नमस्कार।
जी भगवानी जी, हम और हमारे श्रोता बेसब्री से आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में। तो हमें प्लीज बताएं कि कौन कौन है आपके घर परिवार में।
जी मेरे तो हम लोग चार भाई होते हैं, और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, माँ अभी जिंदा है
जी,
और मैं छोटा सा सैलून दुकान का व्यवसाय करता हूँ
जी,
और मेरा पढ़ाई 8वीं तक हुआ है, ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ मैं
जी,
क्योंकि आने जाने में थोड़ा से दिक्कत होते थे दीदी, वहाँ से भुरसुदा से सर्रा जाना पड़ता था।
अच्छा,
5 किलोमीटर का दूरी है, 5-6 किलोमीटर का।
जी जी जी,
इसलिए ना 8वीं कक्षा ही पढ़ के छोड़ दिया हूँ, और मैं अपने पिताजी का व्यवसाय यानी सैलून दुकान का था उसको कर रहा हूँ।
अच्छा, और आपका विवाह हो चुका है?
जी मेरा विवाह हो चुका है, 1996 में मेरा विवाह हुआ है।
जी जी,
मेरा एक पुत्री और 2 पुत्र है।
वो लोग क्या कर रहे हैं?
पुत्री का शादी हो गया है दीदी, वो 10वीं किए हैं पुत्री।
अच्छा,
और मेरा बड़ा पुत्र है वो भी 10वीं किए हैं, और अपना सैलून दुकान का व्यवसाय वो भी कर रहा है अलग से।
अच्छा,
और मेरा छोटा लड़का है गजेंद्र प्रसाद सेन
जी,
वो मेरे साथ में रहता है और अभी कॉलेज कर रहे हैं मेरा।
अच्छा, तो कॉलेज में क्या विषय लेकर पढ़ रहे हैं?
8।
अच्छा, और क्या बनना चाहते हैं वो?
अब हमारा तो धंधा सैलून दुकान है दीदी, तो सोच रहा है बच्चे लोग की धंधा करेंगे करके। मैं बोले देखो अपना आगे का पढ़ाई जारी करते रहो
जी जी,
अगर भविष्य में आपका कहीं उज्ज्वल भविष्य बन जाए तो पुश्तैनी धंधा को छोड़ के अपना व्यवसाय रोजगार में लग जाना और दूसरा करके।
बहुत अच्छी आपकी सोच है और आपके विचार हैं कि शिक्षा जो होती है वो हमेशा काम आती है, और उसके लिए जितना भी ज्ञान आपको जहां से भी मिल सके उसे ग्रहण करते रहना चाहिए। आज हमारे कार्यक्रम में भगवानी प्रसाद सेन जी हमारे साथ हैं सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में। भगवानी जी, आपने बताया कि आपका सैलून है, तो हम जानना चाहते हैं कि जो पुश्तैनी जो काम होता है आपका, वो तो आप पिताजी से जो सीखा आपने, इसके अलावा आपने कहीं प्रशिक्षण लिया है?
प्रशिक्षण तो मैं कहीं नहीं लिया हूँ दीदी, मगर पिताजी काम करते थे ना
जी,
तो उसके साथ में जाके बैठता था सैलून दुकान में
जी जी,
तो जिस हिसाब से पिताजी अपना काम करने का जो ढंग था उसका देख देख के मतलब मैं सीखा हूँ।
अच्छा, तो वो बचपन से ट्रेनिंग आपकी चलती रही पिताजी के साथ में, तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव होता है, और इस क्षेत्र में अनुभव की कीमत सबसे ज्यादा होती है ना? तो आज ये जानना चाहते हैं कि जैसे कोरोना काल आया तो उसका प्रभाव सैलून पर भी बहुत पड़ा होगा।
पड़ा है दीदी, सैलून पर पड़ा है। उस समय हम लोग काम धंधा बंद कर दिए थे, किसी के भी मिलना जुलना बंद कर दिए थे
जी,
क्योंकि जान है तो जहान है
जी जी।
और सबसे दुख की बात यह है दीदी कि मैं एक हाथ से विकलांग भी हूँ।
ओह, तो कैसे आपके हाथ का क्या प्रॉब्लम हुआ?
मेरा जो बाया हाथ है ना
जी जी,
वो विकलांग है, बचपन से है, 6 माह का उम्र था उस समय।
ओहो, तो उससे आप काम नहीं कर पाते हैं?
नहीं कर पाता हूँ दीदी, कर पाता हूँ तो भी तो परिवार को अपना पालता हूँ, और मेरे जो ग्राहक लोग है ना वो भी समझदार है, बेचारे लोग समझते हैं।
जी जी जी, तो उससे किस तरह की प्रॉब्लम है आपके हाथ में?
मेरा एक हाथ पूरा चलता ही नहीं है दीदी।
ओ, तो फिर आप ये जो कटिंग और ये सब सैलून का काम है वो कैसे कर पाते हैं?
क्या है वो थोड़ा से यहाँ वहाँ से यानी कि जो अपना भुजा है ना
जी,
भुजा से कट गया है, अलग से है भुजा के मतलब यानी हड्डी टूट गया है, चमड़ी से लगा हुआ है।
ओहो हो,
विकलांगता है, जो पोलियो के शिकार बोले जाए, है
जी।
ना। तो उसमें क्या है, थोड़ा से उंगली जो है ना कोकवा कोकवा टाइप में है ना, उसमें ना मैं कंघी फंसा लेता हूँ
जी।
और अपने कोहनी को सीने में रख के यानी काम चला लेता हूँ।
मतलब आपने अपनी जो कमजोरी है उसको अपने व्यवसाय में आड़े आने नहीं दिया, और बड़ी
जी
खूबसूरती के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और कई तरह की आजमाइशों को पूरा करते हुए आप अपना काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत
जी
बड़ी
जी
बात
जी
है, क्योंकि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें परफेक्शन जरूरी है। हर एक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, हर एक व्यक्ति जो अपना हेयर कट है वो सब बहुत सुंदर चाहता है, तो उसको
जी जी
परफेक्शन देने के लिए आपने बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हुए परफेक्शन दिया है। बहुत हम सभी इस बात को जानकर बहुत प्रेरित हो रहे हैं कि व्यक्ति अगर चाहे तो वो हर मुसीबत से पार कर सकता है, ये आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है
जी
जी। तो और एक और बात हम जानना चाहते हैं कि जैसे कोरोना काल आया तो उसके बाद जब सैलून खुले तो बहुत सारे नियम आए थे, तो कौन कौन से नियम आए थे और क्या क्या लोगों को समझना है और क्या आप लोगों को समझना पड़ा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए।
अब कोरोना काल में ऐसा है दीदी कि अब 2 गज की दूरी है तो हम लोग क्या है सैलून दुकान वाले 2 गज की दूरी तो नहीं अपना सकते,
जी
पेट चलना है तो यानी करना ही पड़ेगा। मगर इतना जरूर है सैनिटाइजर का जो उपयोग है उसको यानी करते थे, जैसे ही हमारे दुकान में आते हैं ग्राहक तो उसको सबसे पहले गेट के ही पास उसको सैनिटाइजर करते हैं, पूरे शरीर में डालते हैं और हाथ को सैनिटाइजर करवाते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे कुर्सी में जैसे बैठेगा तो बैठने के बाद के मतलब वो उसका जो काम करते हैं ना उसमें भी पूरा हर चीज में सैनिटाइजर रखते हैं,
जी
यहाँ तक से ब्रश को भी सैनिटाइजर में धोते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं, चेहरा जैसे पर चेहरा में पानी वगैरह डालते हैं उसमें भी सैनिटाइजर करते हैं।
अच्छा, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सारी चीजों को आप सैनिटाइज करके तब इस्तेमाल करते
जी
हैं, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी है कि आप उसको अच्छे से सैनिटाइज करें कोई भी चीज है, ताकि अगर किसी को अगर बीमारी है तो दूसरे तक ना पहुंच पाए।
मैं 1 दिन में आधा लीटर सैनिटाइजर का उपयोग कर लेता हूँ दीदी। सब सामान को भी धोना पड़ता है, टॉवेल वगैरह सबको, तो
जी।
आधा लीटर का सैनिटाइजर का उपयोग करके के मतलब अपना पेट पालन करता हूँ दीदी।
हाँ, ये एक एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन आपकी दुकान पर आने वाले इस बात से निश्चिंत होते हैं कि आपकी दुकान में आकर उन्हें कोई दूसरी बीमारी नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप
जी
एकदम
दीदी
नियम से इन सारे चीजों का पालन करते हैं। तो भगवानी जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसा ये आपका प्रोफेशन है, इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े सैलून्स आ गए हैं शहरों में, अगर हम जाके देखें तो तरह तरह के इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तरह तरह के प्रशिक्षण आ गए हैं, है ना?
जी।
तो आपने अपने पिता से सीखा और आपके बच्चे जो है वो आपसे सीख रहे हैं, तो आपके बच्चों को आगे अच्छा प्रशिक्षण मिले, अच्छी जानकारी मिले, इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि क्या और होना चाहिए, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, या किस तरह के प्रशिक्षण आप उनको और दिलवाना चाहते हैं?
इसके लिए मैं ये कहूंगा दीदी कि मेरा बच्चा है ना बड़ा वाला जो है चंद्र
जी
प्रकाश सेन,
जी
वो यानी कुछ दिन से बाहर यानी गए थे ट्रेनिंग के लिए।
जी
मेरे यहाँ फूफू का लड़का है यहीं पास में सिमगा में,
जी
वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। तो जितना भी अभी सारा डिजाइन वाले जो कटिंग आए हैं मशीन से फैसिलिटर वगैरह करने का
जी
या धागा करने का जितना भी है ना, तो मेरा लड़का सीख के आए हैं और अपना दुकान में उपयोग करते हैं।
जी
मेरा दुकान सासाहोली में है, तो सासाहोली में क्या है मेरे दुकान में लाइट वगैरह भी नहीं है तो मशीन वगैरह का काम नहीं कर पाता मैं, अब मेरा लड़का करता है।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो हर फील्ड में आती है, और
जी
उसको स्वीकार करके आगे बढ़ने पर ही अपना जो व्यवसाय होता है वो आगे बढ़ता है, और आप इस लाइन पर चल रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो भगवानी जी, हम आपसे आपके गांव के बारे में जानना चाहेंगे कि कितना
जी
बड़ा है आपका गांव और वहां आसपास क्या-क्या दर्शनीय स्थल हैं।
मेरे गांव ज्यादा बड़ा नहीं है दीदी, आश्रित गांव गुजरा है और ग्राम पंचायत भुरसुदा है।
जी
और मेरे गांव के पास में दर्शनीय स्थल यानी यहाँ पे जैसे 10 किलोमीटर के आगे जैसे जाओगे तो सोमनाथ है,
अच्छा
और इधर यानी 10 किलोमीटर के दूरी पे जाओगे तो खपरी मढ़ी बंजारी का है,
अच्छा
15 किलोमीटर के दूरी पे बोहरी है। अब सबसे बेटर ये है कि हमारे गांव में रणबोड़ देव का जो मंदिर है उसमें साल में एक बार मड़ई और मेला होता है, तो
अच्छा
बाहर से लोग के मतलब रणबोड़ देव का दर्शन करने भी आते हैं, मड़ई मेला में आते हैं।
अच्छा तो वो कब लगता है मड़ई मेला? अच्छा
बसंत पंचमी को हमारे गांव में,
अच्छा तो तरह तरह की चीजें आती होंगी, झूले आते होंगे
झूले वगैरह आते हैं दीदी, मगर सबसे खासियत यह है मेरे गांव का,
जी।
पता नहीं हमारे यहाँ का जो देवता है सबके ऊपर इतना आशीर्वाद छाए रहते हैं, कोई भी जैसे आते हैं ना, जैसे होटल वगैरह आ गया, पान ठेला आ गया, खिलौना वाला आ गया, तो रणबोड़ देव के नाम से जानते हैं उसको, तो उसका सामान बच के नहीं जाते हैं।
अच्छा मतलब सबको प्रॉफिट होता है वहां पर आपके गांव में आने पर,
जी
आशीर्वाद है ईश्वर का, जिनके नाम से मड़ई मेला लगता है उनके आशीर्वाद से वो उन्नति करके जाते हैं वहां पर, धन कमा कर जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप।
हाँ जी। और उस देवता का ये भी प्रमाण है दीदी कि जैसे जानवर है,
जी
जानवर जैसे कहीं गुम गया है,
जी
और कहीं गुम गया है तो खोजने से अगर कहीं जैसे नहीं मिलता है तो वो इष्ट देवता का जो है ना अपना रणबोड़ देव का,
जी
उसका श्रद्धा सुमरन करके अगर श्रद्धा मन से यानी जोड़ा नारियल कहीं बदना बद दोगे ना, तो खोया हुआ यानी कि मतलब जानवर आपके घर आ जाएगा अगर किसी का हाथ नहीं लगे रहेगा तो भी,
अच्छा
ये उसका प्रमाणित है।
चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई कि विश्वास जो ईश्वर पर है वो लोगों का यही है कि
जी
ईश्वर उन पर कृपा करते हैं। सप्ताह के श्रोता इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं भगवानी प्रसाद सेन जी। भगवानी जी, हम आपके बारे में जान चुके हैं, आपके प्रोफेशन के बारे में जान चुके हैं, आपके गांव के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं, और अब हम जानना चाहते हैं कि आपके शौक क्या क्या हैं।
जी मेरा शौक है आकाशवाणी के लिए पत्र लिखना, सुनना, और अच्छे अच्छे दोस्तों से मुलाकात करना, पुराना पिक्चर देखना।
अरे वाह, पुरानी पिक्चरों में कौन सी पिक्चर आपको पसंद है बहुत?
पुराने पिक्चर, हर पिक्चर पसंद है दीदी मेरे को,
फिर भी कोई फेवरेट तो होगी जिसको बार बार देखने का मन करता हो?
मेरा सबसे फेवरेट है गीत गाता चल फिल्म सचिन का।
क्या बात है, उसका गीत आपने सबसे पहले पसंद किया है ना
जी।
बहुत ही अच्छी मूवी है। अच्छा ये आकाशवाणी से आप किस तरह से जुड़े हुए हैं, मतलब रेडियो से आप कैसे जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं?
मैं उस समय जब छोटा था तो हुरसुदा से सौरा स्कूल जाता था, तो उस समय मेरे को कोई नॉलेज नहीं था, तो एक यानी परसदा का यानी आकाशवाणी रायपुर से काम में काम करता था,
अच्छा
तो जब बीच में नाला था ना तो नाला पार करने में दिक्कत होता था पढ़ाई के समय, तो वो भी यानी नाला पार करके अपने खेत जाते थे, तो
अच्छा
ऐसे यानी कि मतलब चर्चा वगैरह हुआ ना
हाँ
तो बोले कि मैं आकाशवाणी में काम करता हूँ, वहाँ जो पत्र वगैरह जाते हैं उसका छटिंग वगैरह करता हूँ ऐसा करके, तो
हाँ
मैं बोला हम लोग भी रुचि लेना चाहते हैं
हाँ
तो हम जैसे पत्र भेजेंगे तो कैसे शामिल होगा ऐसा करके, तो
अच्छा
बोले ठीक है मेरा यानी नाम याद रख लेना
हाँ
और भेज देना ऐसा करके बोले थे। अब
अच्छा
वो बाबा तो खैर नहीं है इस दुनिया में, मगर उसके पुत्र यानी काम करता था सुरेश साहू नाम का,
अच्छा
अब वो भी रिटायर हो चुका है
अच्छा
आकाशवाणी रायपुर से,
हाँ
तो उसके माध्यम से के मतलब पत्र व्यवहार के लिए जुड़े हैं दीदी।
अच्छा
अब जब पहले आकाशवाणी रायपुर सुना ना तो उसके बाद धीरे 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 नॉलेज हुआ कि यहाँ यहाँ चलता है, ये चलता है, ये स्टेशन चलता है ऐसा करके ना, तो उस हिसाब से ना हम लोग धीरे धीरे आकाशवाणी में भी बढ़ते गए हैं। अब बिलासपुर है, रायपुर है, रायगढ़ है, अंबिकापुर है ना, अपना जो
हाँ हाँ
छत्तीसगढ़ का जितने भी चैनल है उनको भी सुनते हैं।
तो एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि पहले और अब के कार्यक्रमों में क्या अंतर आप पाते हैं, अभी के जो रेडियो के जो कार्यक्रम?
पहले और आपके कार्यक्रम में थोड़ा फर्क पड़ गया है। पहले क्या है, ऐसे मुखाग्र हुआ करता था, अब डिजिटल टाइप में हो गया है, तो उसमें फर्क आया है। और कैसे मतलब शब्दों का उच्चारण का ये सब थोड़ा सा बदलाव आया है, श्रोता भी बढ़ गए हैं पहले की अपेक्षा। अब जिस प्रकार से श्रोता लोग जिन्हें कोई जैसे आकाशवाणी में मांग कर रहे हैं उस हिसाब से यानी कि मतलब कार्यक्रम दे रहे हैं, तो कार्यक्रम तो मेरे को अच्छा लगता है सब।
भवानी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अर्पा रेडियो आप कब से सुन रहे हैं?
अर्पा रेडियो तो अभी अभी चालू हुआ है दीदी। अब पहले तो बिलासपुर का FM चलता था, है ना, जब से यानी अर्पा रेडियो चालू हुआ है तब से यानी सुन रहा हूँ मैं। मगर इतना मैं जरूर कहूंगा
हाँ?
कि मेरे पास मोबाइल ऐप का सुविधा नहीं है।
अच्छा,
तो बच्चे लोग जैसे शाम को आते हैं ना, तो बच्चे लोग के पास है ना मोबाइल, तो उसमें शाम का कार्यक्रम ही सुन पाता हूँ एक दो ठो,
अच्छा,
और बाकी बिलासपुर का चलता है ना वो FM वाला, उसको सुनता हूँ।
तो जो एक दो कार्यक्रम आप सुनते हैं तो कौन कौन से कार्यक्रम आप सुन पाते हैं?
जैसे हेलो मितान है,
अच्छा,
और ये अपना ये जो कार्यक्रम चलता है ये शीर्षक वाला,
अच्छा,
और एक अपना यदि अभी आप कभी है श्रोताओं से जो मुलाकात का है शीर्षक साप्ताहिक, तीन को सुन पाता हूँ दीदी।
अच्छा, चलिए भगवानी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके कि इतनी व्यस्तताओं के बावजूद और ये एंड्रॉइड मोबाइल ना होते हुए भी आप हमारे कार्यक्रम जो सुनने की आपकी प्रबल इच्छा है उसको किस तरह से पूरा कर पा रहे हैं। भगवानी प्रसाद जी, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और बहुत सारी जानकारियां अपने बारे में, अपने गाँव के बारे में दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
दीदी मैं ये कहना चाहूंगा,
हाँ जी,
सामने होली त्योहार है दीदी, तो होली का गाढ़ा गाढ़ा आप सभी उद्घोषकों को बधाई हो और साथ में श्रोताओं को बधाई हो मेरे तरफ से।
आपको भी बहुत बहुत बधाई।
जी
रंगों से
दीदी,
खेलिए, सूखे रंगों से खेलिए, खुशियां बांटिए और खुश रहिए। शुक्रिया
जी दीदी, जी दीदी।
सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।